मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 31 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं आनंद तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से, अजय कुमार भास्कर बहराइच उत्तर प्रदेश से, रविन्द्र कुमार वर्मा आपका गांव है परसरामपुर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से और प्रखर मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आनंद, अजय, रविन्द्र और प्रखर आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ आज मैं आप सबको सूचनाएं देना चाहूंगा। पहली तो यह कि मेरे पास लगातार बहुत से मेल आ रहे हैं और जिसमें स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि उन्हें ये क्लास अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि यहां की 15 दिन की क्लासेस करनी भी चाहिए तो कब करनी चाहिए। मित्रों, सच पूछे तो यह बहुत ही धर्म संकट वाला प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में मैं अपने को थोड़ा सा असहज सा महसूस करने लगता हूं कि मैं इसके बारे में क्या आप सबको सलाह दूं। नो डाउट कि इसके बारे में सही निर्णय लेने वाले आप ही सही व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु मैं आज आपको एक मेल जरूर पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो मेरे पास कल ही आया है और इसे लिखने वाले हैं चंद्रशेखर यादव जो हमारे 6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने इसमें दो बातें कही हैं। पहली बात तो वह अपने अपना अनुभव शेयर किया है, शायद उनका यह अनुभव आपको निर्णय लेने में कुछ मदद कर सके। और दूसरा यह कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास में आने वाले हैं उनको उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, तो एक साथ दो काम होंगे। ये मेल उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपके सामने उनके शब्दों को रखने की यहां कोशिश कर रहा हूं। देखिए, शायद आप सबको कुछ मदद मिल सके या जो ऑलरेडी आ रहे हैं उनके मन में एक अलग किस्म का विश्वास पैदा हो सके यहां की क्लासेस को लेकर के, और साथ ही साथ उन जो सजेशन चंद्रशेखर दे रहे हैं वो सजेशन भी उनको स्वीकार्य हो सके। इन्होंने लिखा है कि सर, टुडे आई वांट टू शेयर यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सर, मैं आज आपसे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सर, आफ्टर डूइंग योर 15 डेज क्लासेस आई एम फीलिंग दैट आई हैव अचीव्ड सम स्पेशल थिंग्स इन माय लाइफ। आपके 15 दिन की क्लासेस को अटेंड करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में कोई बहुत ही विशेष किस्म की उपलब्धि हासिल की है। व्हाट यू हैव टोल्ड अबाउट इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, आई फॉलोड इट एंड फाउंड पॉजिटिव रिजल्ट। आपने जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बताया था मैंने उसका अनुसरण किया, उसे लागू किया और उसके मुझे बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल हैज चेंज्ड, हमारे लिखने और पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। सर, नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट वन सब्जेक्ट विथ एनदर सब्जेक्ट। अब मैं एक विषय को अन्य दूसरे विषयों से जोड़ने में सक्षम हो गया हूं। सर, अब ये एक पोर्शन पूरा हो गया है। फिर वो लिखते हैं, सर आई वांट टू एडवाइज टू आवर नेक्स्ट कमिंग बैच फ्रेंड्स, If you are coming at Bhopal, so please do not take any pressure and do not think that what will happen there and come here with open mind. Trust me, dear friends. कह रहे हैं कि अब मैं अपने जो दोस्त जो अभी के बैच में आने वाले हैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो प्लीज अपने दिमाग में किसी तरह का कोई दबाव न रखें और यह बिल्कुल भी न सोचे कि वहां जाने के बाद क्या होगा। बिल्कुल खुले दिमाग से आए। ट्रस्ट मी डियर फ्रेंड, मेरा विश्वास करें मेरे दोस्तों, यू विल एंजॉय देयर, आप वहां बहुत एंजॉय करेंगे एंड यू विल अचीव मच मोर नॉलेज अबाउट एवरी फील्ड। और वहां जाने के बाद आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से ज्ञान अर्जित करेंगे। यू विल फील डिफरेंट, आप अपने आप को अलग महसूस करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक बेटर प्लान फॉर योर प्रिपरेशन, और आप अपनी तैयारी के लिए बेहतर योजना बनाने के योग्य बन सकेंगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू स्टडी एक्चुअली, और आप यह समझने के योग्य बन सकेंगे कि सही मायने में कैसे पढ़ना चाहिए। थैंक्स डियर फ्रेंड्स एंड सर। मेरे दोस्तों आपको बहुत धन्यवाद, और सर आपको भी, चंद्रशेखर यादव। मित्रों उन्होंने ये मेल भेजा है, ये मेल मैंने आपके सामने रखा है। देखिए शायद इससे आप लोगों को निर्णय लेने में और क्लास में आने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने में मदद मिल सके। मित्रों मुझे एक दो आपको दूसरी सूचनाएं देनी है। पहली तो यह है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे तो हमने दो नए फीचर्स की शुरुआत की है। उस पर जाने पर आप डीडी न्यूज लाइव देख सकेंगे, दूरदर्शन के समाचार। आपको मालूम है कि मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि रात में 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी न्यूज और 9 बजे से 10 बजे तक इंग्लिश न्यूज आती है, और उसमें ही छोटे से हिस्से में वो किसी एक करंट टॉपिक पर डिस्कशन भी दिखाते हैं। तो आप डीडी न्यूज लाइव देख सकेंगे, और साथ ही आप राज्यसभा में जो राज्यसभा चैनल्स को भी लाइव देख सकेंगे। ये एक सूचना है। दूसरी सूचना ये है फ्रेंड्स कि कल हम लोगों ने AFEIS पर ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में एक YouTube पर प्रोग्राम डाला है, ज्योग्राफी के सिलेबस पर YouTube पर, जिसमें मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल में आप बताने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो प्रिय श्रोता हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसे डेफिनेटली बहुत ध्यान से सुने, कोशिश करें कि उसके अधिकांश पॉइंट जो महत्वपूर्ण समझते हैं उन्हें नोट भी करते चले जाएं। मेरा विश्वास है कि इस सिलेबस को सुनने के बाद जो आपके दिमाग में अस्पष्टता होती है ज्योग्राफी के बारे में, किसको पढ़ें, किसको छोड़ें, किसको कितना वजन दें, किसको कम महत्वपूर्ण माने, शायद उसके बारे में आपको मार्गदर्शन मिल सकेगा। आखिरी सूचना यह है फ्रेंड्स कि आपको मालूम है कि हमारे संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, और आज इकोनॉमिक सर्वे आएगा और कल बजट पेश किया जाएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, तो प्लीज आप अभी से थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, इकोनॉमिक सर्वे को देखें कि उसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, उन पर उनको वाच करें। डेफिनेटली मैं भी इस पर चर्चा करूंगा, और फिर जो बजट आ रहा है बजट पर भी मैं बात करूंगा कि उसमें से कौन कौन से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो ये दोस्तों कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं न्यूज पर। दोस्तों रेडियो और दूरदर्शन की कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको लेकर के मैं चर्चा कर सकूं, लेकिन एक शब्द की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, वो है फ्रास्ट बाइट। फ्रास्ट बाइट, ये फ्रास्ट बाइट क्या है? अगर आप लोगों ने दूसरे चैनल्स देखे हों या अखबारों को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है, जो कनाडा के ऊपर और फिर आर्कटिक तक चला जाता है, मतलब आर्कटिक के नजदीक है, जबरदस्त रूप से सीवियर कोल्ड से परेशान है। वहां बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, और शिकागो में तो टेम्परेचर -27 डिग्री हो गया है। लोग चौंक कर रहे हैं कि इतनी ठंड कैसे पड़ रही है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उसका असर हम देख रहे हैं। तो अखबारों में एक शब्द आया है फ्रास्ट बाइट। याद रखिए फ्रास्ट है, फ्रास्ट है ना, जिसको ओला तुसार पाला जिसको कहते हैं, बाइट उसको काटता है, जैसे वो काट रहा हो, ओला आपको काट रहा, जैसे कहते ना ठंड, चुभने वाली ठंड। तो फ्रास्ट बाइट जो शब्द है, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब शिकागो में इतनी ठंड पड़ रही है कि फ्रास्ट बाइट की स्थिति बन रही है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और यदि आप उस ठंड के संपर्क में आएंगे तो आपका शरीर सुन्न होने लगेगा, और शरीर सुन्न होने के कारण बट नेचुरल है कि उसमें कुछ भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी खराबी आ सकती है, और हो सकता है कि उसका प्रभाव यह हो कि जो शरीर का हमारा अंग ठंड का शिकार हो जाएगा, उसका रंग गहरा नीला या काला पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर केवल एक ही उपाय बचता है कि जान बचाने के लिए उस हाथ पैर या शरीर के उस अंग को काट दिया जाए। जब ठंड इस लेवल की पहुंच जाए तो उसको कहते हैं फ्रास्ट बाइट, फ्रास्ट बाइट। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कभी कभी अखबारों में आपने देखा है कि समाचार पत्रों में किसी शब्द की चर्चा को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं अब समाजवाद पर कुछ बातें करना चाहूंगा, जिसका मैंने कल आपसे वायदा किया था। और समाजवाद पर हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे लीडर थे और मिनिस्टर भी रहे, जिनका निधन हो गया, वो बेसिकली समाजवादी नेता रहे हैं। बेसिकली देखिए कि समाजवाद क्या है। एक्चुअल में दो अलग अलग बिल्कुल क्षेत्र हैं ये धन पर आधारित व्यवस्थाएं। एक होता है पूंजीवाद, पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद जहां की प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अनुमति है। आप काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, सरकार के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, सरकार को टैक्स दीजिए और फिर आप जितना कमाना चाहें कमाइए। दूसरा होता है साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं है, सब कुछ राज्य के द्वारा नियंत्रित होगा, जितनी संपत्ति है वो राज्य की होगी, दैट्स ऑल। जो समाजवाद है वो इसके बीच का है, मिक्स्ड आप कह लीजिए, कि जहां पूंजीवाद भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और समाजवाद भी और साम्यवाद भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। यह बेसिकली जो समाजवाद है एक प्रकार का आर्थिक सामाजिक दर्शन है, आर्थिक सामाजिक दर्शन। और दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला यह है कि धन संपत्ति का जो स्वामित्व और जो वितरण होगा, यानी कि जो प्रोप्राइटरशिप होगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो समाज के अधीन होगा। और दूसरा, जो निजी संपत्ति पर जो आधारित अधिकार हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। देख, अब मैं चलिए इसे ही दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कि ये बेसिकली है क्या। देखिए, साम्यवाद को हम डिफाइन अगर करें तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक से क्षमता अनुसार और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार, फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज हर एबिलिटी टू इच अकॉर्डिंग टू हर हिज नीड, यानी कि जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से राज्य आपसे काम लेगा, आप जो काम कर सकते हैं आपसे वही काम कराएगा, लेकिन जो आपको देगा उसके बदले में, उस काम के बदले में, वो आपकी आवश्यकता अनुसार देगा, आपके काम के हिसाब से नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, कोई दूसरा व्यक्ति मजदूर है, ठीक है, तो हो सकता है कि डॉक्टर अकेला हो तो उसको अकेले के जीवन यापन के लिए जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाएगा, और दूसरा मजदूर है, उसकी पत्नी भी है, दो बच्चे भी हैं। अब वो मजदूरी कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, सड़क बना रहा है, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो डॉक्टर से अधिक है, तो पता लगा कि उस मजदूर को डॉक्टर से अधिक दिया जा रहा है। इसे ही कहा गया है प्रत्येक से क्षमता अनुसार, आपसे आपकी जो क्षमता है उसी के अनुसार काम लिया जाएगा। मजदूर से तो डॉक्टरी का काम नहीं करा सकते आप, लेकिन जो आपको दिया जाएगा वो आपकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। समाजवाद क्या है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको शायद अंतर बहुत स्पष्ट हो जाए। प्रत्येक से क्षमता अनुसार, देखिए आपको लेना तो काम उनकी क्षमता के अनुसार ही पड़ेगा, तो ये लेगा तो वही प्रत्येक से क्षमता अनुसार, लेकिन वो जो देगा प्रत्येक को कार्यानुसार, यानी कि वह जो काम करेगा उसी के अनुसार उसे उसके काम के बदले में रिवार्ड दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा, जो भी आप कह लें। मान लीजिए आप उद्योगपति हैं, कोई बात नहीं, आप उद्योग लगाइए, सरकार आपको उद्योग लगाने से मना नहीं करेगी, और उस लेकिन कुछ सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी, लाइसेंस आपको दे न दे सरकार निर्धारित करेगी, आप इतना से अधिक कीमत रख सकेंगे नहीं रख सकेंगे सरकार निर्धारित करेगी, सरकार आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देगी, आपको नियंत्रित करेगी, और उसके अनुसार फिर आप जो भी अर्निंग करते हैं वो आपके पास होगी। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, वो ये है कि मूलतः जो शब्द है वो समाजवाद ही था, पहले जो शब्द यूज हुआ है वो समाजवाद शब्द ही यूज हुआ है। हुआ क्या कि फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषित किया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो वहां से कम्युनिस्ट शब्द पॉपुलर होना शुरू हुआ। और जब रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई 1917 में, तो लेनिन ने अपनी पार्टी का नाम बदल करके साम्यवादी पार्टी रख लिया, साम्यवादी पार्टी। उसके बाद से ये जो समाजवाद है ये थोड़ा सा हट करके साम्यवादी शब्द का इस्तेमाल करने लगा और समाजवाद थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ खिसक गया। मतलब ऐसा नहीं है कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों एक ही रहे, दोनों फिर थोड़े से अलग अलग दिखाई देने लगे। तो साम्यवादी व्यवस्था आप जानते हैं रूस में शुरू में रही, फिर चीन में रही, लेकिन भारत ने अपने यहां जो व्यवस्था लागू की, न तो हम पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर सकते थे और न पूरी तरह से साम्यवादी व्यवस्था लागू कर सकते थे, तो हमारे यहां समाजवाद की कल्पना की गई। अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता है, यूरोप के ज्यादातर देश पूंजीवादी व्यवस्था को ही मानते हैं, और 1830 से 1850 के बीच का जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे यूरोप में ये जो समाजवादी विचार धारा थी ये काफी जोर पकड़ने लगी थी, उसका काफी दबदबा होने लगा था, और वहीं से फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि यूरोप में वो फैल नहीं सका, केवल रशिया में ही उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद फिर जब रशिया में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया तो आप देखते हैं कि जो यूरोप का पूर्वी भाग है वो धीरे धीरे रूस के प्रभाव में आने लगा, जिसे हम पूर्वी यूरोप कहते हैं। अब तो खैर रशिया अपने आप में बिखर चुका है, तो आप यूं कह लीजिए कि साम्यवादी व्यवस्था लगभग लगभग ध्वस्त सी ही हो चुकी है। तो दोस्तों अब आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो नहीं के बराबर है, मात्र एक क्लिपिंग्स, राइट। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सौरभ कुमार, राखी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, राहुल कुमार, चंद्रशेखर यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और खुर्शीद आलम। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यह समाप्त करते हैं। नमस्कार।